तुलसीदास, लोक मंगल और समन्वय, डॉक्टर सत्यपाल शर्मा। तुलसी का आविर्भाव उस समय हुआ जब देश में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में अशांति और अराजकता की स्थिति थी। धार्मिक सांप्रदायिक तनाव चरम सीमा पर था। वैमनस्य और अनैतिकता का बोलबाला था। राजा प्रजा सभी का जीवन असुरक्षित था। शासक अपने ही सुख मद में लीन थे। लोक कल्याण की उन्हें कोई चिंता न थी। मंदिरों को तोड़े जाने से व्यापक हिंदू समाज की निराशा भी उन्हें कोई चिंता न थी। मंदिरों के तोड़े जाने से व्यापक हिंदू समाज निराशा के गर्त में डूबा हुआ था। गार्हस्थ धर्मों पर संन्यास भारी पड़ रहा था। लोग जीवन से विमुख होते जा रहे थे। ऐसे समय में एक ऐसे मार्गदर्शक की जरूरत थी जो लोग को निराशा के गर्त से उबार कर जीवन कर्म की ओर उन्मुख कर सके, जनता में उत्साह और प्रेरणा का संचार कर सके। इस हेतु रामचरित से अच्छा अवलंब और भला क्या हो सकता था। तुलसी की लोकमंगल दृष्टि को देखने के लिए उनके काव्य के विविध गुणों को देखना होगा। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि वृत्तियों की भिन्नता के बीच से जो मार्ग निकल सकेगा वही लोक रक्षा का मार्ग होगा, वही धर्म का चलता हुआ मार्ग होगा, जिसमें शिष्टों के आदर, दीनों पर दया, दुष्टों के दमन आदि जीवन के अनेक रूपों का सौंदर्य दिखाई पड़ेगा। वही सर्वांगपूर्ण लोक धर्म का मार्ग होगा। आचार्य हरि प्रसाद द्विवेदी के अनुसार तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी ने समन्वयवादी विचारों द्वारा समाज में व्याप्त वैषम्य एवं वैमनस्य, विद्वेष एवं कटुता, ईर्ष्या एवं द्वेष को दूर कर स्नेह, सौहार्द एवं प्रेमयुक्त वातावरण का लोक निर्मित करना चाहा। तुलसी के काव्य में परस्पर विरोधी ध्रुवों के बीच समन्वय का विराट प्रयास दिखाई देता है। शिव द्रोही में भगत कहावा, सो नर सपने हो मोहि न पावा, तथा शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भरी, घोर नरक महु वास, के द्वारा तुलसी ने शैव वैष्णव मत में समन्वय का प्रयास किया तो भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा के द्वारा भक्ति और ज्ञान का समन्वय तथा सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा के माध्यम से सगुण और निर्गुण के बीच समन्वय स्थापित किया। वर्णाश्रम को बनाए रखते हुए भी उसके अंतर्गत भेदभाव को दूर करने के लिए गुरु वशिष्ठ को निषाद रात से भेंट करते हुए दिखाकर तथा शूद्र तथा शबरी, केवट आदि के साथ राम को प्रेम पूर्वक मिलते दिखाकर तुलसी ने उच्च आदर्श एवं निम्न वर्ग की खाई को अपनी समन्वयवादी प्रवृत्ति के माध्यम से पाटने का प्रयास किया। इसी तरह मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक कहकर उन्होंने मालिक एवं सेवक में भी समन्वय स्थापित किया। पारिवारिक क्षेत्र में भाई, पिता, पुत्र, पत्नी, माता आदि के आदर्श रूपों को दिखाकर उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए दिखाकर तुलसी ने पारिवारिक समन्वय का संदेश देते हुए एक आदर्श परिवार की स्थापना पर बल दिया। तुलसी मूलतः एक भक्त हैं। उनकी भक्ति के मूल में भी लोक मंगल दृष्टि ही है। उन्होंने अगम अगोचर निर्गुण ब्रह्म की अपेक्षा सहज सरल और बोधगम्य सगुण साकार मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भक्ति की। यह भक्ति आमजन के लिए भी सहज है। भक्ति तभी कल्याणप्रद होती है जब उसमें सबका स्वार्थ ही न निहित हो बल्कि परमार्थ की शुद्धि कराने की कामना हो, सबका मंगल करने की भावना हो। तुलसी ने राम को आदर्श की उस पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया जहां मानव जीवन को उनकी भक्ति में ही परम सार्थकता का अनुभव होता है। राम को भक्ति का माध्यम बनाकर उन्होंने स्वांत सुखाय रघुनाथ गाथा को मानव कल्याण की गाथा बना दिया। तुलसी की राम भक्ति सिर्फ भक्ति नहीं थी, उसमें लोक धर्म का आदर्श भी था। तुलसी की भक्ति के संबंध में आचार्य शुक्ल ने ठीक ही कहा है कि तुलसी की भक्ति केवल व्यक्तिगत एकांत साधना के रूप में नहीं है, व्यवहार के क्षेत्र के भीतर लोक मंगल की प्रेरणा करने वाली है। तुलसी की लोक मंगल दृष्टि का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि तुलसी न तो राम के रसिक रूप के उपासक हुए और न ही उनके बाल रूप के। लोक कल्याण की भावना से संचालित होने के कारण उन्होंने राम के लोक मंगलकारी रूप की प्रतिष्ठा की। लोक मंगलकारी समाज, उसमें सभी का जीवन कल्याणकारी तथा सुख की अनुभूति कराने वाला होगा। सभी मर्यादा और कर्तव्य की सीमा में रहेंगे। इस प्रकार के समाज में आत्मकल्याण के साथ साथ लोक कल्याण होगा, साथ ही शक्तिशील और सौंदर्य का सामंजस्य भी होगा। जीवन का सौंदर्य ही लोक मंगल में है। समाज में उपस्थित बाधा विघ्नों, अन्याय, शोषण, विषमता आदि को मिटाकर स्वस्थ एवं सौहार्दपूर्ण समाज की स्थापना करना लोक मंगल का उद्देश्य है। यही उद्देश्य तुलसी के संपूर्ण काव्य में दिखाई देता है, जिसे आचार्य शुक्ल ने लोक मंगल की साधना अवस्था कहा है। लोक मंगल का शाब्दिक अर्थ उस व्यवस्था या वृत्ति से है जिससे समाज का कल्याण होना अवश्यंभावी हो। लोक का अर्थ है जन या समाज तथा मंगल का अर्थ है कल्याण। दूसरे शब्दों में इसे समाज का कल्याण कह सकते हैं। लोक मंगल अपने व्यापक अर्थ में पूरी मानवता के कल्याण से जुड़ जाता है। भारत में संस्कृत के काव्य शास्त्रियों के काव्य का एक प्रयोजन अमंगल का निवारण माना है। आचार्य भामा के शब्दों में काव्य का प्रयोजन है, काव्यम यशस्ते अर्थकृते व्यवहार विदे देश वितरे क्षतये सदय परिनिवृत्तये कांता सम्मित उपदेश युजे। स्पष्ट है कि काव्य का एक प्रयोजन है शिवेतर क्षतिये। शिवेतर का अर्थ है शिव से इतर, अर्थात अमंगल, और अमंगल के क्षति का अर्थ है मंगल। तुलसीदास के काव्य में यह प्रयोजन और व्यापक होकर अमंगल के निवारण से लोक मंगल की स्थापना तक पहुंच जाता है। तुलसी के सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ रामचरितमानस के पहले श्लोक में ही मंगल की कामना की गई है। उनके शब्दों में वर्णनामार्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वस्तुतः तुलसी हिंदी के ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी काव्य रचना का मूल उद्देश्य लोक मंगल का विधान करना स्वीकार किया है। वे कहते हैं, कीरति भनिति भूति भल सोई सुर सरिसम सबकर हित होई। स्पष्ट है कि तुलसी की कविता गंगा की तरह कल्याण प्रक है और वह सबके मंगल का प्रयोजन लेकर चलती है। तुलसी की दृष्टि में कीर्ति, कविता और ऐश्वर्य वही अच्छा होता है जो गंगा के समान सबका हित करने वाला हो। जो कविता लोक मंगल का विधान नहीं करती और जिसे पढ़ने के बाद मन में सद्वृत्तियां जागृत नहीं होती, वह भला किस काम की। तुलसी की यह सिर्फ दृष्टि ही नहीं बल्कि अपनी रचनाओं में लोक मंगल का विधान करते हुए वे स्वयं इसका पालन भी करते हुए दिखाई पड़ते हैं। उनके द्वारा रचित रामचरितमानस लोक मंगल का विधान करने वाला हिंदी का कदाचित सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इस महाकाव्य के नायक राम का जन्म ही जग के कल्याण के लिए हुआ है। राम जन्म जग मंगल हेतु। इस लोक कल्याणकारी राम की चरित कथा शिव जी ने रचकर अपने मानस में रख ली और उपयुक्त अवसर पाकर उन्होंने पार्वती से कही। शिव का पूरा व्यक्तित्व ही लोक मंगलकारी है। चूंकि यह कथा शिव जी के मानस में रखी गई थी, इसलिए इसका नाम है रामचरितमानस। यहाँ पात्र और इसमें रखी गई वस्तु अर्थात रामचरित कथा दोनों ही मंगलकारी हैं। इस तरह रामचरितमानस आधार और अधिरचना दोनों दृष्टि से मंगलकारी है। राम होश संभालते ही पीड़ित मानवता के उद्धार में लग जाते हैं। विश्वामित्र के आश्रम के रक्षार्थ जाते हुए वे मारीच से मुकाबला करते हैं और बाद में ताड़का से भिड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि राम प्रतिपक्ष को हृदय परिवर्तन का मौका नहीं देते। युद्ध के दौरान वे रावण पर दया करके उसे मौका देते हैं। वे तो सागर को भी मौका देते हैं और आस्ते के लिए 3 दिन तक प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन वे अहिंसावादी की तरह जीवन भर हृदय परिवर्तन की आस लगाकर बैठने वाले नहीं। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भय बिनु होई न प्रीति, अर्थात दुष्ट भय से ही प्रेम करते हैं। तुलसी के राम निर्मलों का उद्धार करते हैं, पत्थर बनी अहिल्या को फिर से जीवन देते हैं तो दुष्टों का संहार भी करते हैं। तुलसी की दृष्टि में लोक मंगल की स्थापना है तो अत्याचार का खात्मा जरूरी है और अत्याचार के खात्मे के लिए साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनाई जा सकती है। राम भाई की पत्नी की अपहर्ता दुष्ट बालिका वध छिपकर करते हैं। बुराई और अत्याचार का खात्मा जरूरी है, वह कैसे हुआ यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ लोग लोक मंगल का आशय सिर्फ क्षमा, दया, उदारता जैसे व्यापक मानवीय मूल्यों के प्रसार से लगाते हैं। वस्तुतः यह लोक मंगल के स्वरूप का केवल एक पक्ष है। अत्याचार एवं अन्याय के विरुद्ध क्रोध, घृणा एवं द्वेष का भाव तथा उसके विनाश के लिए संघर्ष का प्रयास लोक मंगल का ही दूसरा रूप है। वस्तुतः अत्याचार एवं अन्याय के प्रति आंखें मूंदे रखने का रवैया ही लोक विरोधी है। वैसे भी क्षमा दया जैसे गुण उसी को शोभा देते हैं जो शक्तिशाली है। दिनकर ने ठीक ही कहा है कि क्षमा शोभते उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। काव्य रचना में शोषितों के प्रति संवेदना का भाव और शोषकों तथा दुराचारियों के प्रति घृणा और क्रोध का भाव, उनके विनाश एवं ध्वंस में जो भाव होता है, लोक धर्म उसमें अपना मनोहर रूप प्रकट करता है। राम ने रावण का वध सिर्फ सीता को छुड़ाने के लिए नहीं किया। वन में विचरण करते हुए जब राम को पता चला कि हड्डियों का ढेर उन ऋषियों का है जिनका खून रावण ने पिया है, तो राम ऐसे रावण का वध करने की प्रतिज्ञा करते हैं। यह प्रतिज्ञा मानव समाज के कल्याण के लिए की गई है। तुलसी ने मानस के उत्तरकांड में धर्म के लोप और पपाचारों के बढ़ने पर चिंता व्यक्त की। कवितावली में तुलसी ने कलयुग का जो चित्र प्रस्तुत किया है वह हृदय को झकझोर देने वाला है। उस समय कृषकों के साथ होने वाले अत्याचारों का वर्णन तुलसी ने मार्मिकता के साथ किया है। शासकों द्वारा शोषित उस समय जनता की स्थिति ऐसी थी कि न तो किसान के पास खेती करने को थी और न भिखारी को भीख ही मिलती है। दरिद्रता की ऐसी भयावह स्थिति तुलसी के शब्दों में देखिए, खेत ने किसान को, भिखारी को न भीख भली, वनिक को वनिच न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीध मान सोच बस, कहें एक अंशो कहाँ जाए का करी। यह उस समय युग का दर्द है। आर्थिक स्थिति इतनी जर्जर है कि लोग अपने पेट की आग बुझाने के लिए बेटे बेटी तक को भी बेच देते हैं। तुलसी के शब्दों में, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करे, पेट को पचत बेचत बेटा बेट की, आगे बड़वागते बड़े आग पेट की। भुखमरी और बेचारगी का ऐसा चित्रण मध्यकाल में दुर्लभ है। लोक की ऐसी दुर्दशा का ऐसा चित्रण लोक कल्याण के लिए चिंतित कभी ही कर सकता था। इसी तरह तुलसी ने कलयुग में पाखंड वंद विश्वास तथा ईर्ष्या द्वेष आदि का चित्रण कर दर्शाया है कि ये बुराइयां लोक मंगल की राह में बाधाएं हैं और लोक मंगल का विधान करने के लिए इन बाधाओं का शमन आवश्यक है। कलयुग की बुराइयों को दूर करने के लिए तुलसी ने चरित नामक नायक राम की कल्पना की और उसी राम के चरित्र को लोक मांगलिक चेतना का आधार बनाकर जनमानस तक पहुंचाने का बीड़ा उन्होंने उठाया। तुलसी ने जिस राम राज्य की कल्पना की वह वस्तुतः लोक मंगल का ही राज्य है। तुलसी की कल्पना का राम राज्य हर प्रकार से लोक कल्याणकारी है। राजा राम प्रजा की इच्छा को सर्वोपरि मानते हैं। लोक की मूल में प्रजा और तुलसी इसी प्रजा का हित चाहते हैं, तभी तो उन्होंने लिखा है, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। आज पूरे विश्व में लोकतांत्रिक लोक कल्याणकारी राज्यों की प्रधानता है। हम आज समझ सकते हैं कि तुलसी का वह आदर्श जो उन्होंने मध्यकाल में देखा था आज बदले हुए रूप में ही सही लेकिन चरितार्थ हुआ है। तुलसी ने अपने काव्य में मानवतावाद को प्रदर्शित किया है। तुलसी के राम संपूर्ण मानवता के रक्षक के रूप में उपस्थित होते हैं। तुलसी के काव्य में पात्रों का चरित्र चित्रण भी लोक मंगल की भावना से अनुप्राणित है। उनके काव्य के चरित्रों में त्याग बलिदान और प्रेम की पराकाष्ठा दिखाई पड़ती है। उन्होंने पात्रों की परिकल्पना लोक मंगल की आशा से ही की है, चाहे वह राम हो, सीता हो, भरत, लक्ष्मण, दशरथ या हनुमान हो। सभी के चरित्र आदर्श की पराकाष्ठा को छूते हुए लोक मंगल का विधान करते हैं। तुलसी पात्रों का ऐसा चरित्र गढ़ना चाहते हैं जो लोगों को प्रभावित करें। इस संदर्भ में यह ध्यातव्य है कि तुलसी के राम केवल मर्यादा पुरुषोत्तम और आराध्य देवता ही नहीं बल्कि लोक मांगलिक सांस्कृतिक चेतना के प्रतिनिधि के रूप में है। जिस कवि के काव्य में लोक के प्रति पीड़ा होती है, लोक मंगल की भावना होती है, उसी कवि का काव्य देश काल की सीमा का अतिक्रमण कर सर्वकालिक और सर्वप्रिय होता है और वही कवि लोकनायक माना जाता है। तुलसी की समग्र काव्य साधना लोक मंगल की विराट भावना को आत्मसात किए हुए है। उन्होंने जिन जीवन मूल्यों की स्थापना की उनमें से अधिकांश देश और काल की सीमाओं को लांघकर समस्त मानव जाति को सुख शांति समृद्धि और कल्याण के रास्ते पर अग्रसर करने वाले हैं। तुलसी की लोकमंगल दृष्टि को भारत ही नहीं विश्व में भी सराहा गया है। लोकमंगल से युक्त तुलसी काव्य वर्तमान भौतिकवादी संस्कृति और उससे उत्पन्न अनैतिक दुराचरण एवं अव्यवस्था को दूर करने के लिए एक उपयोगी औषधि का कार्य कर सकता है। यह कारण नहीं है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य में जिस लोक मंगल की साधना का प्रतिपादन किया था उसमें खरे उतरने वाले तुलसी को ही उन्होंने प्रथम लोकधर्मी कवि स्वीकार किया। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि तुलसी की समग्र काव्य साधना के मूल में लोकमंगल दृष्टि है। तुलसी की लोकमंगल दृष्टि पर बड़े आरोप लगाए जाते हैं, पहला उनका नारी विषयक धारणा और दूसरा उनके शूद्रों के प्रति धारणा। तुलसीकृत पंक्ति ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी इतनी प्रचलित हुई कि शूद्रों और नारियों के प्रति तुलसी की संवेदना वाली पंक्तियां दब गईं। उपरोक्त पंक्ति में तुलसी की शूद्र तथा नारी विषयक दृष्टि निश्चित रूप से दोषपूर्ण है और उसका येन केन प्रकारेण बचाव कतई उचित रहे, लेकिन इस संदर्भ में कुछ अन्य बातों का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए। पहली बात, शूद्रों और नारी प्रति तुलसी की दृष्टि सिर्फ एक ही पंक्ति में नहीं व्यक्त हुई है। राम के द्वारा शबरी के झूठे बेर खाने, वशिष्ठ द्वारा निषाद राज को गले लगाने जैसे प्रसंग यह दर्शाते हैं कि तुलसी भेदभाव को गलत मानते हैं। इसी तरह जब वे लिखते हैं कि कतविधि सृज नारी जग माही पराधीन सपने हो सुख नाही, तो वे नारियों की त्रासद नियति में उसके साथ सबसे नजदीक खड़े हैं। दूसरी बात, वाल्मीकि रामायण में उल्लिखित शंबूक वध और सीता वनागमन जैसे प्रसंगों को तुलसी ने अपने मानस में स्थान नहीं दिया। संभवतः तुलसी स्वयं मुक्त प्रसंगों को पचा न पाए हों। आरोपों के बावजूद तुलसी की लोकतात्विक दृष्टि पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। उनके पास सजग दृष्टि थी जिससे वे लोक जीवन की सामान्य से सामान्य और जटिल से जटिल अनुभूतियों को बड़े सहज ढंग से चित्रित कर देते थे। लोक में प्रचलित विभिन्न रीतियों रिवाजों और पद्धतियों का जितना सुंदर चित्रण तुलसी ने अपने काव्य में किया है वह हिंदी साहित्य में अद्भुत एवं विलक्षण है। तुलसी को लोक की इतनी चिंता थी कि उन्होंने ब्रज और अवधि दोनों लोक भाषाओं में रचना की तथा उस समय प्रचलित सभी शैलियों में रचना की। तुलसी का काव्य ही नहीं उनका व्यक्तित्व भी लोकमंगल की भावना से ओतप्रोत था, इसलिए उन्होंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अपने काव्य की रचना की। तुलसी की कदाचित सर्वाधिक बड़ी उपलब्धि यही है कि विवादों के बावजूद उन्होंने अपनी काव्य साधना को लोक कल्याण के लिए उपयोगी बना दिया। तुलसी के राम मंगल भवन अमंगलहारी हैं तथा राम कथा मंगल का विधान करने वाली है। औसत मनुष्य यही सोचता है। आज भी अधिसंख्य हिंदू घरों में मानस का पूजा जाना इसका प्रमाण है।